मीना जैसे ही घर आई, बिस्तर पर यूं गिरी मानो देह ने प्राण छोड़ दिए हों। उसकी बच्ची पलकू उसे गिरता हुआ देख रही थी, परंतु 4 साल की उम्र में वो मीना का बोझ उठा नहीं सकती थी। मीना ज्यादा थकी थी, शायद कुछ ग्राहक ज्यादा होंगे आज। मीना जब उठी तो खुद को आईने में निहारने लगी। निहारते निहारते वो अपने बदन से एक एक कपड़ा उतार रही थी। पलकू ये सब देख रही थी पर कुछ कह नहीं सकती थी। औरत और बचपन एक ही तो है, सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहकर सहने की शक्ति इन्हीं दो को हासिल है। मीना आईने के सामने अब पूरी नंगी खड़ी थी। उसके बदन पर जख्म साफ नजर आ रहे थे। ये आम दिनों के जख्मों से कुछ गहरे थे। मीना एक एक आंसू बहाई जाती और अपने जख्मों को सहलाई जाती, मानो वो जख्म उससे कोई दर्दनाक कहानी कह रहे हों और केवल वही इन्हें सुन पा रही हो। तभी उसकी नजर पलकू पर पड़ती है। मीना आज पहली दफे पलकू को देख कर डरी थी। माँ अपने बच्चे को देखकर केवल उसी वक्त डरती है जब उसे महसूस होता है कि उसके बच्चे का जीवन बिखर रहा है। मीना के आंसू में दुख नहीं, केवल डर था, शत प्रतिशत डर। दुख तो वह भोग चुकी थी समस्त संसार का, औरत का रंडी होना उसने जिया था। कट, डायरेक्टर की आवाज आती है। लोग इस नाट्य में इतना खो चुके होते हैं कि कट सुनने के बावजूद भी अमीषा को एक तक निहारे जाते हैं। और निहारते भी क्यों नहीं, अमीषा किरदार को नहीं, यूं लग रहा था मानो किरदार अमीषा को निभाना चाह रहा है। अचानक पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। अमीषा ने उन तालियों में भी खामोशी ढूंढ ली थी। उसने जाके उस 4 साल की बच्ची को गोद में उठाया और रोते हुए उसको चूमने लगी। तालियां शांत हो गई थी और कमरा भी। शूट के बाद एक पार्टी में अमीषा को देर हो गई। आज वो घर सुबह 4 बजे आई थी। उसकी कामवाली ने जब दरवाजा खोला तो अमीषा को देखकर उसके मुंह से यकायक निकला, दीदी आज बहुत थके थके से लग रहे हो, काम ज्यादा था क्या? उसने शायद पिछले 1 साल में ये पहली दफे पूछा था। अमीषा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कमरे में अपने बिस्तर को थोड़ी देर निहारती रही और अचानक उस पर ऐसे गिरी जैसे देह से प्राण निकल जाते हैं।